अध्याय दो, शोध समस्या। शोध समस्या का अर्थ एवं विशेषताएं, अंडर ब्रैकेट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, किसी भी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल तथा शैक्षिक एजुकेशनल शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। शोध समस्या की स्पष्ट रूप से पहचान कर उल्लेख करना शोधकर्ता के लिए एक कठिन कार्य होता है, फिर भी वह अपने अनुभवों एवं पहले किए गए शोधों की समीक्षा रिव्यू करके ठोस शोध समस्या बना पाता है। पैराग्राफ चेंज। जब शोधकर्ता किसी क्षेत्र में किए गए शोधों की समीक्षा करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विभिन्न लोगों द्वारा किए गए शोधों के परिणाम में असंगतता, इनकंसिस्टेंसी है, तो वह स्पष्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई शोध समस्या मौजूद है। अब प्रश्न है कि शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम से तात्पर्य क्या होता है। समस्या शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों वेरिएबल्स के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध इंटरोगेटिव रिलेशनशिप की अभिव्यक्ति होती है। कर्लिंग 1986 द्वारा शोध समस्या को कुछ इसी अर्थ में परिभाषित किया गया है। अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है जो प्रश्न करता है दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। पैराग्राफ चेंज। यदि इस परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि शोध समस्या के कथन रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नांकित हैं। एक, समस्या कथन प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अभिव्यक्ति प्रश्नात्मक वाक्य इंटरोगेटिव साइंस द्वारा होती है। ऐसा वाक्य बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। उदाहरण स्वरूप, क, छात्रों के वर्ग निष्पादन, क्लासरूम अचीवमेंट तथा बुद्धि लब्धि आईक्यू में क्या संबंध होता है। ख, स्कूल के छात्रों में दुश्चिंतता, एंजाइटी तथा बुद्धि इंटेलिजेंस में क्या संबंध होता है। पैराग्राफ चेंज। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि शोध समस्या के कथन स्पष्ट रूप में एक प्रश्नात्मक रूप इंटरोगेटिव फॉर्म में अभिव्यक्त होते हैं। कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कुछ पूछा जा रहा है जिसका उत्तर शोध करने के बाद ही दिया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शोध समस्या की अभिव्यक्ति एक प्रश्नात्मक रूप में न करके साधारण रूप में भी कर दी जाती है, परंतु यह प्रथा अधिक प्रचलित नहीं है क्योंकि इससे यह नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में शोधकर्ता किस बिंदु को लेकर शोध करना चाहता है। दो, शोध कथन द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध की अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब यह हुआ कि शोध समस्या के कथन की अभिव्यक्ति करने के पहले शोधकर्ता को चरों वेरिएबल्स के बारे में यह निर्णय ले लेना पड़ता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में पहले कथन में वर्ग निष्पादन, क्लासरूम अचीवमेंट तथा बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन दो चर वेरिएबल हैं, उसी तरह दूसरे कथन में भी दुश्चिंता, एंजाइटी एवं बुद्धि इंटेलिजेंस दो चर हैं। चरों की पहचान कर लेने के बाद दोनों के बीच एक विशेष संबंध रिलेशनशिप की उक्ति की जाती है। तीन, शोध समस्या का कथन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे आनुभविक विधियों एम्पिरिकल मेथड्स से जांच किया जाना संभव हो। दूसरे शब्दों में शोध समस्या का कथन ऐसा होना चाहिए कि उसके चरों वेरिएबल्स की माप आंकड़ों डेटा का संग्रह कलेक्शन करके किया जाना संभव हो सके। पैराग्राफ चेंज। इन प्रमुख विशेषताओं के अलावा कुछ और भी वांछनीय विशेषताएं डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाई गई हैं जिनसे शोध समस्या का स्वरूप नेचर स्पष्ट हो जाता है। ऐसी प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं। पैराग्राफ चेंज। एक, किसी शोध समस्या को नैतिक, मॉरल मूल्यों से या निर्णयों, जजमेंट से संबंधित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसी शोध समस्या का अध्ययन करना संभव नहीं हो तो कठिन अवश्य है। जैसे क्या विधवा विवाह संपन्न होना चाहिए, क्या व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में झूठ बोलना चाहिए आदि। कुछ ऐसे प्रश्नात्मक कथन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनका अध्ययन करना काफ़ी कठिन है। दो, शोध समस्या को वैज्ञानिक, साइंटिफिक होने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका संबंध महत्वपूर्ण विषयों या घटनाओं से हो, न कि तुच्छ विषयों या घटनाओं से। शोध समस्या का स्वरूप ऐसा भी होना चाहिए कि उसे जांच करने में अत्यधिक समय या धन का व्यय न हो। 3. शोध समस्या को न तो अत्यधिक सामान्य टू जनरल और न ही अत्यधिक विशिष्ट टू स्पेसिफिक होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप शोध समस्या का कथन जैसे क्यों सृजनात्मकता क्रिएटिविटी व्यक्ति की आत्म यथार्थता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द्वारा प्रभावित होती है एक अत्यधिक सामान्य टू जनरल समस्या का उदाहरण है। इस ढंग की शोध समस्या की जांच टेस्ट नहीं की जा सकती है, इसलिए वैज्ञानिक रूप से यह एक अर्थहीन समस्या बन जाती है। जैसा कि कर्लिंगर 1986 ने भी कहा है, अगर समस्या अत्यधिक सामान्य है तो वह इतनी स्पष्ट हो जाती है कि उसकी जांच नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से वैज्ञानिक रूप से वह अर्थहीन हो जाता है। इसी तरह से यदि कोई समस्या अत्यधिक विशिष्ट स्पेसिफिक हो जाती है तो वह भी शोध के दृष्टिकोण से बेकार एवं अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि ऐसी शोध समस्या के अध्ययन से कोई अर्थपूर्ण सामान्यीकरण मीनिंगफुल जनरलाइजेशन नहीं हो पाता है। कर्लिंगर 1986 ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है, शायद अत्यधिक विशिष्टता अत्यधिक सामान्यता से भी बड़ा खतरा है। ।  उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि शोध समस्या एक प्रश्नात्मक कथन के रूप में व्यक्त की जाती है। शोध समस्या को वैज्ञानिक कहलाने के लिए कुछ और भी विशेष जरूरतों का पूरा होना अनिवार्य है, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है। पैराग्राफ चेंज। शोध समस्या के प्रकार (_ टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम) सामान्यतः गणित मैथमेटिक्स तथा तर्कशास्त्र लॉजिक जैसे औपचारिक विषय फॉर्मल डिसिप्लिन्स को छोड़कर हम लोग अन्य जितने तरह के विषयों डिसिप्लिन्स को पढ़ते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में उन विषयों या शास्त्रों डिसिप्लिन्स को रखते हैं जिन्हें हम विज्ञान (_ साइंस) कहते हैं। इसमें रसायन शास्त्र (_ केमिस्ट्री) समाजशास्त्र सोशियोलॉजी मनोविज्ञान साइकोलॉजी भूगोल ज्योग्राफी जीव विज्ञान बायोलॉजी भौतिकी फिजिक्स आदि आते हैं। दूसरी श्रेणी में उन विषयों को लिखते हैं जिन्हें हम विज्ञान साइंस नहीं कहते हैं, जैसे कला आर्ट्स साहित्य लिटरेचर संगीत म्यूजिक भाषा लैंग्वेज आदि को इसी श्रेणी में रखते हैं। तीसरी श्रेणी वह है जिसमें हम दर्शन शास्त्र फिलॉसफी धर्म रिलीजन आदि को रखते हैं। इनको लोगों ने सुविधा के लिए एक संयुक्त नाम दिया है जिसे अभौतिक विषय मेटाफिजिकल डिसिप्लिन कहा जाता है। चित्र 1 में इन 3 विषयों को दिखाया गया है। इस चित्र में 2 वृत्त सर्कल हैं। भीतरी वृत्त में उन विषयों को रखा गया है जिन्हें हम विज्ञान कहते हैं। उसके ऊपरी वृत्त में फैला आर्ट्स तथा साहित्य आदि को रखा गया है। वृत्त के बाहर अभौतिक विषयों मेटाफिजिकल डिसिप्लिन्स को रखा गया है। पैराग्राफ चेंज। इन 3 तरह के विषयों डिसिप्लिन्स में शोध रिसर्च किए जाते हैं, अतः इन सभी में शोध समस्याएं रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सभी शोध समस्याओं को विशेषज्ञों ने 2 भागों में बांटा है, अ समाधेय समस्या सॉल्वेबल प्रॉब्लम तथा ब असमाधेय समस्या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। इन दोनों की व्याख्या निम्नांकित है, और समाधेय समस्या सॉल्वेबल प्रॉब्लम। समाधेय समस्या से तात्पर्य उन समस्याओं से होता है जिनमें वैसे प्रश्न उठाए जाते हैं जिनका उत्तर दिया जाना व्यक्ति की समस्या सामान्य क्षमताओं कॉमन कैपेसिटीज के आधार पर संभव है। इस तरह की शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम मूलतः चित्र के दोनों वृत्त सर्कल्स के भीतर आने वाले विषयों डिसिप्लिन्स अर्थात विज्ञान साइंस तथा कला आर्ट्स एवं मानविकी ह्यूमैनिटीज में होती है। जहां तक मनोविज्ञान का प्रश्न है, इसमें जो शोध समस्याएं रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं वे प्रायः इसी श्रेणी की होती हैं। शोध मनोवैज्ञानिकों रिसर्च साइकोलॉजिस्ट ने समाधेय समस्या सॉल्वेबल प्रॉब्लम की एक खास विशेषता बतलाई है। शोध समस्या को समाधेय समस्या कहलाने के लिए उसे जांचनीय टेस्टेबल होना चाहिए। किसी भी शोध समस्या को समाधेय समस्या सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहलाने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक उस समस्या में उठाए गए प्रश्न क्वेश्चन को आनुभाविक ढंग से एम्पिरिकली हाँ या नहीं के रूप में उत्तर दे सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक समाधेय समस्या सॉल्वेबल प्रॉब्लम वह है जिसके लिए एक उचित एवं जांचनीय प्राकल्पना टेस्टेबल हाइपोथेसिस को एक अंतरिम समाधान टेंटेटिव सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया जा सके। मैकगुइगन 1990 के शब्दों में एक समस्या को समाधेय माना जा सकता है अगर इसके अंतरिम समाधान के रूप में एक प्राकल्पना बनाया जाना संभव है, जिससे क्या सीखने की प्रक्रिया जीव द्वारा की गई अनुक्रिया के परिणाम इफेक्ट पर निर्भर करती है। यह एक ऐसी शोध समस्या है जिसके लिए तैयार किए गए अंतरिम समाधान टेंटेटिव सॉल्यूशन के रूप में कहा जा सकता है। अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, यदि परिणाम पुरस्कारी रिवॉर्डिंग होगा तो जीव उस प्रक्रिया को करना सीख लेगा, परंतु यदि परिणाम दंडात्मक पनिशिंग होगा तो जीव उस प्रक्रिया को नहीं सीख पाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पैराग्राफ चेंज। एक उपयुक्त प्राकल्पना सूटेबल हाइपोथेसिस में अन्य बातों के अलावा दो गुणों का होना भी अनिवार्य है। पहला, उसे शोध समस्या के लिए सुसंगत रेलेवेंट होना चाहिए, अर्थात उस विशेष प्राकल्पना द्वारा यदि शोध समस्या सचमुच में सही है तो निश्चित रूप से समाधान होना संभव हो, तथा दूसरा, उस विशेष प्राकल्पना को ही जांचनीय टेस्टेबल होना चाहिए, अर्थात उस प्राकल्पना को निश्चित रूप से सही या गलत ठहराया जाना संभव हो। उपयुक्त एवं प्राकल्पना हाइपोथेसिस में ये दोनों गुण हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि संबंधित शोध समस्या समाधेय सॉल्वेबल है व असमाधेय समस्या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। इस तरह की शोध समस्या पर अध्ययन क्षेत्र एक के उन विषयों में किया जाता है जो दोनों वृत्तों से बाहर रखे हैं। दूसरे शब्दों में, इस तरह की शोध समस्या पर विचार दर्शन शास्त्र फिलॉसफी धर्म तथा ऐसे ही अभौतिक शास्त्रों मेटाफिजिकल डिसिप्लिन्स में किया जाता है। असमाधेय समस्या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम का संबंध अलौकिक घटनाओं सुपरनेचुरल इवेंट्स या प्रश्नों से होता है जिसका सही उत्तर देना संभव नहीं होता है। मैकगुइगन 1990 ने असमाधेय समस्या के स्वरूप के बारे में बहुत कुछ इसी ढंग से प्रकाश डालते हुए कहा है। अंडर डबल इन्वर्ट कॉमा, असमाधेय समस्या कुछ वैसे प्रश्न होते हैं जिनका आवश्यक रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता है। प्रायः ऐसे प्रश्नों का संबंध अलौकिक घटनाओं या प्रश्नों से होता है जो मूल कारणों अल्टीमेट कॉजेस से संबंधित होते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई शोधकर्ता कुछ प्रश्न जैसे संसार को किसने बनाया है, आदमी की मूल प्रकृति कैसी होती है, इस संसार का परम सत्य क्या है का अध्ययन करना चाहता है, तो यह असमाधेय समस्या अनसॉल्वेबल का उदाहरण है। मनोविज्ञान का संबंध ऐसी शोध समस्याओं से नहीं होता है। ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनोविज्ञान जो एक विज्ञान है में समाधेय समस्याओं सॉल्वेबल प्रॉब्लम पर अध्ययन किया जाता है, परंतु दर्शन शास्त्र फिलॉसफी तथा धर्म रिलीजन आदि में मूल रूप से असमाधेय समस्याओं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम का अध्ययन किया जाता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि मनोविज्ञान के सभी शोध समस्याएं रिसर्च प्रॉब्लम्स समाधेय सॉल्वेबल ही हैं। सच्चाई यह है कि कुछ विशेष कारणों से मनोविज्ञान की कुछ समस्याएं असमाधेय हैं जिनके कई कारण हैं। मनोवैज्ञानिकों साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसे कारक फैक्टर्स निम्नांकित हैं। एक, समस्या में असंरचना अनस्ट्रक्चरनेस इन प्रॉब्लम। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोध में कभी कभी कोई समस्या इसलिए असमाधेय अनसॉल्वेबल हो जाती है क्योंकि उसमें असंरचना अनस्ट्रक्चरनेस का अवशेष अधिक रह जाता है। यदि समस्या असंरचित संचरित अनस्ट्रक्चर्ड है तो वह निश्चित रूप से समाधेय सॉल्वेबल न होकर असमाधेय अनसॉल्वेबल हो जाती है। जैसे यदि कोई यह प्रश्न करता है, मानव मन कैसे कार्य करता है, हाउ डज द ह्यूमन माइंड वर्क, तो यह एक असमाधेय समस्या अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम का उदाहरण होगा क्योंकि इसमें प्रश्न का उद्देश्य ही बहुत कुछ अस्पष्ट या असंचरित अनस्ट्रक्चर्ड है। यहाँ हाँ, यदि इस समस्या को कुछ दूसरे ढंग से व्यक्त किया जाए ताकि उसमें असंरचना अनस्ट्रक्चरनेस का गुण कम हो जाए तो वह समाधेय सॉल्वेबल बन जाएगा। जैसे यदि उक्त प्रश्न की जगह पर यह कहा जाता है कि मानव के मन में कभी चंचलता क्यों बढ़ जाती है और कभी घट जाती है, तो यह एक समाधेय समस्या होगी। हालांकि इस समस्या का समाधान देना माफ कीजिए समस्या का उत्तर देना भी तुलनात्मक रूप से बहुत आसान नहीं है। दो, अपर्याप्त परिभाषित पद inadequately defined terms मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोध में कभी कभी शोध समस्या के प्रश्न अपने अपर्याप्त परिभाषित पदों के कारण भी समाधेय सॉल्वेबल नहीं रह जाते हैं। इन समस्याओं में निहित पदों को चूंकि व्यवहारिक रूप से ऑपरेशनली परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अतः वह एक असमाधेय समस्या अनसॉल्वेबल बने रह जाते हैं। जैसे क्या बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, डू चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। इस शोध समस्या में अनुकरण एक ऐसा पद है जिसके वस्तुनिष्ठ अर्थ ऑब्जेक्टिव मीनिंग में मनोवैज्ञानिकों के बीच विभिन्नता है, अतः इस शोध समस्या को एक असमाधेय समस्या की श्रेणी में रखा जाएगा। तीन, सुसंगत आंकड़ों के संग्रहण में असंभवता इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेलिवेंट डेटा। मनोविज्ञान की शोध रिसर्च में कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या संरचित स्ट्रक्चर्ड है तथा उसके पद टर्म्स भी व्यवहारिक रूप से ऑपरेशनली अपरिभाषीय डिफिनेबल होते हैं, फिर भी शोधकर्ता यह निश्चित नहीं कर पाता है कि उससे संबंधित सुसंगत आंकड़ों का संग्रहण किस प्रकार किया जाए। इसका परिणाम यह होता है कि समस्या असमाधेय अनसॉल्वेबल रह जाती है। एक उदाहरण लीजिए, मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता एक ऐसे नैदानिक रोगी क्लिनिकल पेशेंट्स जो न बोल सकता है, न देख सकता है और न सुन सकता है कि बुद्धि इंटेलिजेंस पर मनोचिकित्सा साइकोथेरेपी का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना चाहता है। यह शोध समस्या संरचित स्ट्रक्चर्ड है तथा उसके दोनों पद या चर वेरिएबल बुद्धि तथा मनोचिकित्सा ऐसे हैं जिन्हें व्यवहारिक रूप से ऑपरेशनली परिभाषित भी किया जा सकता है। फिर भी इस शोध समस्या के बारे में आंकड़ों डेटा को संग्रहण करना संभव नहीं है। जैसे क्या मनोचिकित्सा से रोगी की बुद्धि बढ़ जाएगी या घट जाएगी, इसके बारे में आंकड़े संग्रह करना संभव नहीं है क्योंकि रोगी न सुन सकता है, न बोल सकता है और न देख सकता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मनोविज्ञान में भी कुछ शोध समस्याएं ऐसी होती हैं जो विशेष कारणों से असमाधेय बन जाती हैं। शोध समस्या के उद्भव की शोध सोर्सेज और ओरिजिन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। एक वैज्ञानिक समस्या का प्रतिपादन फॉर्मुलेशन निश्चित रूप से किसी भी शोधकर्ता के लिए एक कठिन कार्य होता है, फिर भी वह अपने इस कठिन कार्य को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे स्रोतों सोर्सेस का सहारा लेता है जिनसे उसे शोध समस्या का प्रतिपादन करना काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसे स्रोतों में निम्नांकित स्रोत काफ़ी प्रमुख हैं। एक, शिक्षकों छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा अनुभव की गई प्रमुख समस्याओं का अध्ययन कर शोधकर्ता एक प्रमुख शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम का प्रतिपादन फॉर्मुलेशन कर सकता है। उदाहरण स्वरूप आजकल छात्र उपद्रव स्टूडेंट अनरेस्ट एक महत्वपूर्ण समस्या है जिससे स्कूल तथा कॉलेज के शिक्षक और यहाँ तक के अभिभावकगण भी काफ़ी परेशान हैं, अतः यह विषय शोध का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकता है। एक शोधकर्ता इससे कई तरह की शोध समस्या का सूत्रीकरण फॉर्मुलेशन कर सकता है, जैसे उपद्रव में किस तरह के छात्र अधिक हिस्सा लेते हैं, उनका प्रमुख व्यक्तित्व शील गुण कौन कौन सा है होता है, किस उम्र समूह में उपद्रव अनरेस्ट अधिक होता है आदि आदि। दो, सफल शोधकर्ता एक वैज्ञानिक शोध समस्या का प्रतिपादन करने के लिए पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक शोध जर्नल रिसर्च जर्नल्स आदि भी सावधानीपूर्वक पढ़ता है। बहुत से प्रकाशित शोध पत्र रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें लेखक संभावित शोध समस्या पॉसिबल रिसर्च प्रॉब्लम की ओर संकेत करता है। इतना ही नहीं, कुछ पाठ्य पुस्तकों एवं शोध जर्नल में कुछ वैसे प्रविधियों टेक्निक्स एवं कार्यविधियों प्रोसीजर्स का भी उल्लेख रहता है जिनसे शोध की नई समस्या की झलक तो मिलती ही है, साथ ही साथ उनको सुलझाने में शोधकर्ता को विशेष सहायता मिलती है। तीन, शोधकर्ता किसी वैज्ञानिक शोध समस्या का प्रतिपादन करने के लिए शोध प्रोफेसर रिसर्च प्रोफेसर्स विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स आदि से भी सलाह करते हैं। चार, समाज में होने वाले नए नए परिवर्तनों तथा शैक्षिक नवीनता से भी शोधकर्ता को कुछ शोध समस्याएं मिल जाती हैं जैसे आधुनिक युग में कंप्यूटर का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है, अतः इससे संबंधित कुछ शोध समस्या शोधकर्ता को आसानी से मिल जाती है। 5, कभी कभी किसी अध्ययन विषय के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानकारी की पूर्णतः कमी होती है। सामान्यतः ऐसे क्षेत्र वे होते हैं जिनके संबंध में अभी तक किसी प्रकार का शोध रिसर्च नहीं किया गया है। जब ऐसे क्षेत्र के विषय के बारे शोधकर्ता रिसर्चर के मन में कुछ जिज्ञासा उठती है तो कुछ प्रश्नों को अपने सामने रखता है और इसे शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम की उत्पत्ति होती है। मनोविज्ञान के एक क्षेत्र में पारा मनोविज्ञान पारा साइकोलॉजी एक इसी श्रेणी का क्षेत्र है जहां शोध कार्य न के बराबर अभी तक हुए हैं। अतींद्रिय प्रत्यक्षण एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अब तक काफ़ी कम शोध रिसर्च हुए हैं। अतः इस क्षेत्र में अनेकों तरह की शोध समस्याएं रिसर्च प्रॉब्लम मौजूद हैं। 6, शोध समस्या की उत्पत्ति परस्पर विरोधी शोध उपलब्धियों कॉन्फ्लिक्टिंग रिसर्च अचीवमेंट्स की परिस्थिति से भी होती पाई गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शोध समस्या पर किए गए 2 या 2 से अधिक पृथक पृथक शोधों के परिणाम एक दूसरे से भिन्न एवं विपरीत हो जाते हैं। शोधकर्ता के लिए ऐसी परिस्थिति में समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि वह किसी परिणाम को सही माने, इसके निराकरण के लिए उसे एक नया शोध करना पड़ जाता है। परस्पर विरोधी शोध परिणाम का सबसे अच्छा उदाहरण हमें सीखने लर्निंग के क्षेत्र में मिलता है। उदाहरण स्वरूप टॉलमैन तथा उनके अनेकों सहभागियों ने अपने प्रयोगों के आधार पर बतलाया कि सीखने के लिए पुनर्बलन रीइन्फोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि हल थॉर्नडाइक पावलोव स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर बतलाया कि सीखने की प्रक्रिया पुनर्बलन रीइन्फोर्समेंट के अभाव में संभव नहीं है। इस परस्पर विरोधी शोध परिणाम के कारण अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने सच्चाई जानने के लिए शोध किए हैं जिसका मनोविज्ञान का इतिहास साक्षी है। पैराग्राफ चेंज बेस्ट एम कहन 1992 ने शोध समस्या की उत्पत्ति के 60 स्रोतों सोर्सेस का वर्णन किया है जिसमें प्रमुख निम्नांकित हैं 1 कार्यक्रमित निर्देश प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन 2 टेलीविजन निर्देश टेलीविजन इंस्ट्रक्शन 3 टीम प्रशिक्षण टीम टीचिंग 4 घरेलू नीतियाँ एवं अभ्यास होमवर्क पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस 5 पाठ्येतर कार्यक्रम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ खुला वर्ग ओपन क्लासरूम 7 पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक 8 स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम 9 यौन शिक्षा 10 विशेष शिक्षा 11 केस अध्ययन केस स्टडीज 12 सामाजिक आर्थिक अध्ययन एवं शैक्षिक उपलब्धि सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज एंड एजुकेशनल अचीवमेंट 13 दबाव एवं उपलब्धि स्ट्रेस एंड अचीवमेंट 14 प्रशासनिक नेतृत्व एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप 15 आत्म प्रतिमा सेल्फ इमेज 16 छात्रों का व्यावसायिक उद्देश्य वोकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट। उपयुक्त कुछ ऐसे सामान्य स्रोतों का वर्णन किया गया है जिसमें शोध समस्याओं को ढूंढा जा सकता है। यंग 1992 ने शोध समस्या की उत्पत्ति के निम्नांकित 3 स्रोतों को महत्वपूर्ण बतलाया है 1 प्रलेखी स्रोत डॉक्यूमेंट्री रिसोर्स इस स्रोत में पदीय ऑफिशियल एवं अपदीय सांख्यिकियों का निरीक्षण एवं विश्लेषण स्थानीय समाचार पत्रों तथा जनगणना प्रकाशनों सेंसस पब्लिकेशंस जहां से वर्णनात्मक सामग्रियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं को सम्मिलित किया जाता है 2 व्यक्तिगत स्रोत पर्सनल सोर्स इस स्रोत में उन पेशेवरों से बातचीत कर समस्या ढूंढने की कोशिश की जाती है जिन्हें वांछित आंकड़ों के बारे में सही सही ज्ञान होता है 3 पुस्तकालय स्रोत लाइब्रेरी सोर्स इस स्रोत में विभिन्न तरह के पुस्तकों जर्नलों मोनोग्राफ एवं समाचार विश्लेषण आदि को रखा जाता है। इन स्रोतों से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों तरह के ज्ञान संग्रहण किए जाते हैं जिनके आधार पर शोध समस्या के बारे में कुछ निर्णय लिए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज अस्पष्ट हुआ कि शोध समस्या की उत्पत्ति के एक नहीं बल्कि कई स्रोत हैं जिनके माध्यम से शोधकर्ता एक वैज्ञानिक शोध समस्या का सृजन करता है। पैराग्राफ चेंज, शोध समस्या का मूल्यांकन, एवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम का प्रतिपादन कर लेता है तो वह इस बात की भी जांच कर लेने की कोशिश करता है कि वह शोध समस्या कहाँ तक उपयुक्त अप्रोप्रिएट एक वैज्ञानिक है। इसका मूल्यांकन इवेल्युएशन करने के लिए वह कुछ प्रश्नों को उठाता है जिनका उत्तर सकारात्मक अफर्मेटिव मिलने पर यह समझ जाता है कि संबंधित शोध समस्या उपयुक्त अप्रोप्रिएट है। जैसे प्रमुख प्रश्न निम्नांकित है, एक, क्या समस्या ऐसी है जिसे शोध रिसर्च के द्वारा समाधान किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, क्या समस्या ऐसी है जिसके बारे में संगत आंकड़े रेलेवेंट डेटा संग्रहित किए जा सकते हैं और क्या उचित उत्तर दिया जा सकता है। दो, क्या समस्या सार्थक है, क्या समस्या में इतने चर वेरिएबल्स सम्मिलित हैं जिनका अनुसंधान किया जा सकता है, क्या समस्या के समाधान से वर्तमान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। तीन, क्या समस्या नई है, अगर समस्या ऐसी है जिसका अनुसंधान पहले हो चुका है तो उस पर पुनः शोध करने से शोधकर्ता का समय एवं धन दोनों ही बर्बादी होगी, इसलिए समस्या को नया एवं मौलिक ओरिजिनल होना चाहिए ताकि इससे शोधकर्ता एक नए निष्कर्ष पर पहुंच सके। चार, क्या समस्या का कोई सैद्धांतिक मान थ्योरेटिकल वैल्यू है, क्या समस्या ऐसी है जिससे क्षेत्र में उत्पन्न अज्ञानता की खाई भरी जा सकती है, क्या समस्या के समाधान से किसी सिद्धांत के विकास में मदद मिलेगी। पाँच, क्या समस्या ऐसी है जिस पर शोध किया जा सकता है, कोई समस्या अच्छी हो सकती है परंतु यह शोध के योग्य कई कारणों से जैसे शोधकर्ता में प्रशिक्षण की कमी, इसके पास समय तथा धन की कमी आदि से नहीं भी हो सकती है। छः, क्या समस्या ऐसी है जिसके बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार किए जा सकते हैं, क्या इसके लिए अच्छे आंकड़े संग्रहण उपकरण डेटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राप्त हैं आदि आदि। यदि उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ में मिलता है तो समझना चाहिए कि शोध समस्या उपयुक्त अप्रोप्रिएट एवं वैज्ञानिक है। यदि इनका उत्तर नहीं मिलता है तो ऐसी समस्या एक अच्छी शोध समस्या नहीं मानी जाएगी। अध्याय सारांश, चैप्टर समरी। एक, शोध समस्या की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च में एक ऐसा प्रश्नात्मक कथन इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में होता है जिसके चरों की आनुभाविक विधियां एम्पिरिकल मेथड्स द्वारा मापा जा सकता है। शोध समस्या के कथन की कुछ खास खास विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला गया है जिससे शोध समस्या का स्वरूप नेचर स्पष्ट होता है। दो, शोध समस्या के उद्भव के कई स्रोतों का वर्णन किया गया है जिसमें चार स्रोत मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बतलाया गया है। तीन, शोध समस्या का मूल्यांकन इवेल्युएशन करने के लिए कुछ प्रश्नों को उठाया गया है। यदि शोधकर्ता उन प्रश्नों का उत्तर हाँ में पाता है तो वह निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शोध समस्या उपयुक्त अप्रोप्रिएट तथा उपवैज्ञानिक साइंटिफिक है।